मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महा जो विद्यादि सागर सुधी आदि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल गए सयानी सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं के सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। अपने आत्मकल्याण के लिए या अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए आचार्य भगवंतों ने जो हमें विचार दिए हैं उन विचारों का चिंतन कर रहे हैं। विचारों की निरंतर चिंतन करने की प्रक्रिया को भावना या अनुपेक्षा कहते हैं। इससे होता यह है कि हमारे विचारों में दृढ़ता आती है। असल में मिथ्या विचारों की दृढ़ता हमारी अनादि काल की है। जो विचार हमारे जीवन को बुरा बनाते हैं, हमारे जीवन के संस्कारों को खोटा बनाते हैं, वे विचार तो हमारे मन में निरंतर चलते रहते हैं। उनके लिए हमें किसी अभ्यास की आवश्यकता नहीं है। कभी भी कहीं किसी छोटे से बेटे को भी गुस्सा करना, अहंकार करना, लोभ करना, छल कपट करना, ये नहीं सिखाना पड़ता। हिंसा करना नहीं सिखाना पड़ता, झूठ बोलना नहीं सिखाना पड़ता, चोरी कैसे की जाती ये नहीं सिखाना पड़ता, दूसरे के को देख करके अपने मन को गंदा कैसे करना ये नहीं सिखाना पड़ता, कैसे परिग्रह संचय करना सब जानते हैं। छोटे छोटे से टुकड़े बीन के ले आएगा वो बेटा और एक कोने में जमा के रख लेगा। बताइएगा संग्रह की प्रवृत्ति किसी को सिखाना पड़ती है क्या? कुछ ना कुछ अपने मन की चीज जोड़ के रखने का संस्कार ही है। तो इन कषायों का और पाप का संस्कार तो अनादि काल का है, वो हमें बहुत अभ्यास है, श्रुत है, परिचित है और हमारा अनुभूत है। लेकिन इस संस्कार को हमें तोड़ना भी जरूरी है क्योंकि ये हमारे जीवन को बुरा बनाता है। और फिर हमें अच्छे संस्कार डालने के लिए कुछ विचार और अपने भीतर दृढ़ता भी लानी पड़ेगी। विचार हो और दृढ़ता ना हो तो भी काम नहीं बनता। तो हमारे पास श्रेष्ठ विचार हो इसके लिए हमें आचार्य भगवंतों के चरणों में बैठ करके उनसे विचार लेना पड़ेंगे और फिर उन विचारों का निरंतर जब हम अभ्यास करेंगे, निरंतर हम उनका चिंतन करेंगे, तो हमारे भीतर उन विचारों को लेकर के दृढ़ता आएगी और वो दृढ़ता हमारे आचरण को बदल देती है। या ऐसा कहें कि वो दृढ़ता हमारे खोटे विचारों को हटा देती है। और मजा ये है कि जैसे ही हमारे भीतर के बुरे विचार या बुरे संस्कार हटते हैं, हमारा तो स्वभाव ही अच्छा होना है। अच्छाइयां हमें कहीं बाहर से लाने की जरूरत नहीं है, गुणों को हमें कहीं बाहर से कलेक्ट नहीं करना है, अडॉप्ट नहीं करना है। गुण तो हमारा अपना स्वभाव ही है, लेकिन उनको विकृत करने वाली जो चीजें हैं उनको यदि हम हटा दें तो वो जो हमारी गुणवत्ता है वो अपने आप प्रकट हो जाए। इसलिए उन गुणों को प्रकट करने के लिए कहें या कि अपने अवगुणों को हटाने के लिए कहें, ये विचार की प्रक्रिया बहुत जरूरी है। हमारे विचार कैसे हैं? हम सोचते हैं कि इस संसार में जो जो चीजें हमारे संपर्क में आती हैं, इंद्रिय के भोग विषय सामग्री, वो सब शाश्वत है। लेकिन ये हमारा विचार ठीक नहीं है। हमारा अपना अनुभव तो यही कहता है कि ये सब क्षणभंगुर है। तो आचार्य भगवंत उसको दृढ़ कर देते हैं कि हाँ, सचमुच यहां जो भी दिखाई पड़ने वाली चीजें हैं वो सब क्षणभंगुर हैं। जो तुम्हारे अपने जीवन में प्राप्त हुई हैं पांचों इंद्रियों के भोग के लिए, वे सारी वस्तुएं क्षणभंगुर हैं। और यहां हम सहारा ढूंढते हैं, तो यहां पर सहारा तो जो अपने जीवन को प्राप्त कर चुके हैं उनका ही सहारा श्रेष्ठ है, जिन्होंने अभी संसार के राग द्वेष को नहीं छोड़ा है उनका सहारा लेंगे, जो अभी जन्म मरण से खुद मुक्त नहीं हो गए हैं उनका सहारा लेंगे, तो क्या वो हमें हमारी मरण से रक्षा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहां पर संसार में कोई शरण नहीं है, कोई सहारा नहीं है। अगर सहारा है तो हमारी अपनी आत्मा की गुणवत्ता है, या जिन्होंने अपनी उस परम विशुद्ध अवस्था को प्राप्त कर लिया है वे पंच परमेष्ठी हैं, वे हमारे लिए शरण है। इस संसार में चारों गतियों में हम अपनी अज्ञानता से दुख पाते हैं, इसलिए हमें संदेश लेना चाहिए कि इस अज्ञानता को हमें छोड़ना है। यहां हम जो भी सुख दुख भोगते हैं उसके लिए दूसरे को कारण मानते हैं, लेकिन वो बहुत बाहरी चीज है। भीतर तो कारण मेरे ही विद्यमान है। सुख दुख को भोगने के लिए मैं अकेला हूं, कोई उसका उसको साझेदारी नहीं करता है, कोई उसका हिस्सा नहीं बांट कर सकता है कि थोड़ा दुख तुम भोग लेना, थोड़ा मैं भोग लू, कोई कितना भी अपना निकट का क्यों ना। और इतना ही नहीं, ये जो देह हमारे अत्यंत निकट है ये भी हमसे अलग ही है, क्योंकि इसका स्वभाव अलग है, मेरा स्वभाव अलग है। और ये शरीर जिसका कि स्वभाव अलग है, मेरा अलग है, पर फिर भी है तो मेरा ही, और बड़ा अच्छा दिखता है। कि दिखता भर अच्छा है, पर अच्छा है नहीं। इसको अच्छा बनाने की कोशिश अगर हम करें तो ये गुणों के द्वारा अच्छा बन जाता है, वैसे तो इसका स्वभाव गंदा ही है, अपवित्र ही है। ऐसा विचार करने से क्या होगा? ऐसा विचार करने से अनाशक्ति बढ़ती है और अपने गुणों की तरफ रुझान होता है। मुख्य इन सब विचारों का उद्देश्य क्या है? एक ही उद्देश्य। फिर हम देखते हैं कि हम सुबह से शाम तक मन वचन काय की कोई ना कोई क्रिया करते हैं, हमारे संस्कार निरंतर मजबूत हो जाते हैं। अगर हम खोटी क्रिया करते हैं तो भीतर जो पड़े हुए खोटे संस्कार हैं वे प्रबल हो जाते हैं। अगर हम भली क्रिया करते हैं तो खोटे संस्कार ढीले पड़ जाते हैं और हमारे अच्छे संस्कार प्रबल होने लगते हैं। और अगर हम कोई भी क्रिया नहीं करें तो धीरे धीरे करके हम उन सब संसार से मुक्त हो जाएंगे। तो आश्रव दुख कार घनेरे बुद्धिवंत तिन्हें निर्वेद। मेरी बुद्धिमत्ता इसमें है कि मैं इन वचन मन वचन काय से होने वाले जो कर्म आने वाले हैं या संस्कार पढ़ने वाले हैं उनसे बचूं। और उनसे बचने के उपाय का नाम ही संवर है। वो होता है मेरे लिए मन वचन काय की पूरी तरह से क्रियाओं को रोक लूं, या कि सावधानी पूर्वक चलूं, धर्म करूं, अनुप्रेक्षा का चिंतन करूं, परिचय सहन करूं और चारित्र धारण करूं। इन सब चीजों से जो है मेरे अंदर कर्म जो आ रहे थे उनका आना रुक जाता है। और इतने नहीं, दोनों काम एक साथ होते हैं। अगर थोड़ा सा मैं अपनी इच्छाओं को रोक लूं तो ये तपस्या मेरे भीतर पड़े हुए बुरे कर्मों को हटाना शुरू कर देती है। और फिर मैं जरा सा दृष्टि फैला करके देखता हूं इस लोक के बारे में, जब विचार करता हूं कि मेरी अपनी एग्जिस्टेंस इसमें क्या है, तो इस लोक में मैं तो बहुत छोटा सा हूं। ये लोक छह द्रव्यों से मिलकर के बना हुआ है और कोई इसे बनाता नहीं, कोई इसे मिटा नहीं सकता है। ये तो स्वयं अपने आप पर नमन कर रहा है। और मैं तो यहां सोचता हूं कि मैं इसको मिटा सकता हूं, मैं इसको बना सकता हूं। मैं कितना करता और स्वामी बनकर के अपना काम करता हूं और दुख उठाता हूं। ऐसा विचार आ जाने पर इस लोक के चिंतन से और हमारा हृदय जो है क्षुद्रताओं को छोड़ करके और विराट होना शुरू हो जाता है, व्यापक होना शुरू। जैसे कि आकाश सारे द्रव्यों को जगह दे सकता है तो वो तो जड़ है, अचेतन है। मैं तो चेतन हूं, क्या मेरे अंदर मैं सबके लिए जगह नहीं दे सकता हूं? या कि सब में मैं उसी आत्म द्रव्य को नहीं देख सकता हूं जो कि मेरे भीतर है? ऐसा अगर हम चिंतन करें, बार बार चिंतन करें, एक बार में नहीं चलेगा काम, को कई जिंदगियां लग जाएं। हां, ऐसा इस सबके अनुभव करने के लिए, चर्चा करने के लिए तो ठीक है, लेकिन इस सबका अनुभव करने के लिए कई जिंदगियां चाहिए को। और अगर हम सावधानी पूर्वक शुरू करें तो ऐसा नहीं है कि इसी जीवन में भी नहीं प्राप्त कर पाए। आचार्य महाराज तो कहते हैं कि जितनी जितनी ऐसे धर्म के चिंतन करने से आकुलता घटती जाए, उतना उतना मोक्ष आज भी है। पंचम काल में मोक्ष नहीं होता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपनी आकुलताओं को धर्म के चिंतन से कम कर लेवे तो उसे यहीं पर मुक्ति का अनुभव होने लगेगा। आशय समझना, निराकुलता का नाम मुक्ति है, और मैं आकुलता करता हूं तो संसार बढ़ जाता है, और मैं आकुलता कम करूं तो संसार घटेगा, मेरे कदम मुक्ति की तरफ बढ़ेंगे। यही चिंतन की प्रक्रिया की विशेषता है। और फिर हमने कल बैठे थे तो विचार किया था कि यहां पर सब चीजें जो मुझे कई कई बार मिली हैं, हालांकि मेरी इच्छा करने से नहीं मिलती इसलिए मुझे दुर्लभ जान पड़ती हैं, पर हैं तो वे सुलभ क्योंकि कई कई बार मिल चुकी हैं। लेकिन अभी तक जो मेरे लिए बहुत दुर्लभ है, जो अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, वो है रत्नत्रय बोधि। मुझे उस बोधि के लिए प्रयत्न करना चाहिए, और वो बोधि हर एक को नहीं मिलती, वो सिर्फ मनुष्य पर्याय प्राप्त होने पर ही मिलती है। तब तो फिर मनुष्य पर्याय की बहुत कीमत है, मुझे मनुष्य पर्याय की कीमत करना चाहिए, या कि मुझे मनुष्य पर्याय को सार्थक कर लेना चाहिए। जैसे जो अपॉर्चुनिटी जिस वजह से मिलती है उसका हम महत्व समझते हैं, वैसे ही महत्व हमें इस मनुष्य पर्याय का समझना चाहिए कि यह सौभाग्य हमें मिला हुआ है कि हम इस मनुष्य पर्याय में बोधि प्राप्त कर सकते हैं। और यदि हम मनुष्य पर्याय प्राप्त करने के बाद भी बोधि ना प्राप्त करें तो मनुष्य पर्याय की दुर्लभता क्या, कुछ भी नहीं, ऐसे फिर मिलेगी बार बार। वो दुर्लभ कब हो जाती है मनुष्य पर्याय, जब हम उसमें बोधि प्राप्त कर लेते हैं। और वैसे तो दुर्लभ है क्योंकि इसी पर्याय में बोधि की प्राप्ति होती है, तो बोधि मेरे लिए दुर्लभ है, इसलिए मैं सतर्कता से उसके पाने के लिए प्रयास करूं। और इतना ही नहीं, उस रत्नत्रय रूप बोधि की सुलभता को भी समझूं, क्योंकि वो किसी और दूसरे के द्वारा नहीं दी जाएगी, वो तो मैं अपने द्वारा प्राप्त कर सकता हूं, मेरा अपना स्वभाव है। ऐसा विचार करने से उत्साह जागृत होता है कि अरे, जो मेरी अपनी स्वयं की संपत्ति है, मेरी अपनी निजी संपदा है, तो फिर मुझे उसको भूले नहीं रहना चाहिए, मुझे तो उसको प्राप्त कर लेना चाहिए। जैसे एक बेटे के पिता जो है वो घर में ही और बहुत सारा धन पैसा और दबा करके चले गए थे, और जो पिता नहीं रहे और पिता बिना बताए चले गए, अपने मित्र को बता गए थे कि देखो जब बेटे को बहुत जरूरत लगे तो बता देना कि यहां हम रख के जा रहे हैं, अभी बताओगे तो मेरे जाने के बाद संभव हो कि वो सारी खा पी करके और नष्ट कर दे। हां, देखो, किसी भी चीज की दुर्लभता का बोध होने से उसका महत्व हमें समझ में आता है। तो पिता नहीं रहे और बेटे को अब खाने के लाले पड़ने लगे, तो माँ ने कहा कि जाओ, तुम्हारे पिता के अच्छे मित्र हैं, उनसे कुछ मदद करो, उनके यहाँ दुकान पे काम करो, वो तुम्हें शायद कुछ मदद करेंगे। तो अब बताइएगा, वो मित्र उसको देख करके और बेटे को कि मैं जिनके अपने मित्र के यहाँ काम करता रहा, उनके बेटे को अपने यहाँ काम करने को दूँ, जबकि इसके पास तो बहुत संपत्ति है, पर फिर भी अभी अवसर नहीं आया है, अभी मैं बता दूंगा कि तेरे पिता बहुत संपत्ति तेरे लिए दबा के गए हैं, तो हो सकता है कि अभी भी ये गड़बड़ में पड़ जाए। तो देख भाई, तू मेरे बेटे के समान मेरी दुकान पे बैठा कर, मेरे नौकर की तरह नहीं, और तू हीरे जवाहरात की दुकान है परखना सीख ले, बस महीने दो महीने, वो होशियार तो था ही, महीने दो महीने में इतनी लगन उसके लग गई। और चूंकि वो कह रहे हैं कि तू इसका सेठ है, तू इसका मालिक है, ऐसी भावना से दुकान पे बैठने लगा, ईमानदारी से काम करने लगा। एक दिन जो है मित्र ने कहा कि तू जानना चाहता है तेरे पिता तेरे लिए क्या छोड़ के गए, क्या छोड़ के गए, आप ही ने तो मुझे सब कुछ दिया है। मैंने नहीं दिया, तू घर में जा, जहां सोता उसी पलंग के नीचे खोद के देख, ढेर हीरे रख के गए। अब तू उन्हें पहचान पाएगा और अब तू उनकी दुर्लभता समझेगा। ऐसे ही जो है हमारे जीवन में भी बोधि दुर्लभ है, ये मनुष्य पर्याय अगर हमें समझ में आ जाए कि बोधि दुर्लभ है, तो ये मनुष्य पर्याय बहुत कीमती मालूम पड़ेगी, वरना कीमती नहीं मालूम पड़ती। वरना तो ये लगता है कि चलो कोई बात नहीं, इस बार ऐसे ही सही, फिर अगले बार फिर मिलेगी तब कर लेंगे। नहीं भैया, इस मनुष्य पर्याय की दुर्लभता का क्यों बार बार ख्याल कराया जाता है? क्योंकि इस मनुष्य पर्याय में ही बोधि मिलती, और बोधि के मायने ही धर्म है। तो आज मैं सोच रहा था कि रत्नत्रय ही धर्म है और वह दुर्लभ है, तो फिर बोधि दुर्लभ भावना और धर्म भावना अलग अलग क्यों रखना पड़ी? तो आचार्य भगवंत, वैसे तो एक ही भावना में सारी भावना समाई हुई हैं। देखा जाए तो जैसे 10 धर्म है सो कहने को 10 धर्म है, पर वैसे तो एक धर्म में सारे धर्म समाये हुए हैं। एक आ जावे तो सब आ जाते, लेकिन पता नहीं किसको किस माध्यम से आवे, सो भिन्न भिन्न प्रकार से उसको इंटरप्रेट किया है, भिन्न भिन्न प्रकार से उसे जीव को समझा करके और धर्म के मार्ग पर लाने का उपाय बता दिया है। मुख्य अंतर क्या है? रत्नत्रय दुर्लभ है, ऐसा विचार करना निरंतर और सतर्क होकर के उसे प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना, ये बोधि दुर्लभ भावना है। और धर्म मेरा स्वभाव है और उसके प्राप्त हो जाने पर मुझे अनंत सुख प्राप्त होता है, ऐसी धर्म की महिमा का निरंतर चिंतन करना, ये धर्म भावना। जे भाव मोहते न्यारे, दृग ज्ञान व्रतादिक थारे, सो धर्म जबे जिए धारे, तब ही सुख अचल निहारे। वो दुर्लभ तो है रत्नत्रय रूप धर्म, वो बोधि दुर्लभ तो है, लेकिन जब मुझे मेरा अपना स्वभाव है और मुझे प्राप्त हो जाएगी तो मुझे अनंत सुख मिलेगा, ये महिमा है उसकी। इस महिमा का भी चिंतन करना, उसकी दुर्लभता का भी चिंतन करना और उसकी महिमा का भी चिंतन करना, इस तरह से दो अलग अलग भावनाएं रख करके और पूरी 12 भावनाओं के माध्यम से आचार्य भगवंत हमारे जीवन को अच्छा बनाने के लिए हमें कुछ विचार दे रहे हैं। हम इनको रोज रोज करें, इसको रोज रोज भाएं, तो हमारे ये विचार दृढ़ होकर हमारे आचरण को परिवर्तित किए बिना नहीं रहेंगे। धर्म की महिमा अकेले कैसे गाई जाए, अब अपन देखें थोड़ा सा। धर्म हमारा स्वभाव है, जो हमें सच्चे सुख में पहुंचाए वो धर्म है, रत्नत्रय धर्म है। क्षमा आदि जो 10 भाव हैं वे धर्म हैं, और जीवाणम रखनो धम्मो, जीव जो है दूसरे जीव की रक्षा करे, यही उसका धर्म है। कितनी सारी धर्म की परिभाषाएं बना दी। जो मेरा स्वभाव है वो धर्म, उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव शौच सत्य संयम तप त्याग आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य, ये धर्म है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एक रूपता भी धर्म है, और जीवों की रक्षा करना भी धर्म है। अब हम कैसे विचार करें, तो कहते हैं क्रम क्रम से विचार करें। सबसे पहले जो प्रैक्टिकेबल है वो क्या है? जीवों की रक्षा करना, यहां से शुरू करें। जीवों की रक्षा करने का भाव, जीवों के प्रति दया का भाव हमारे भीतर आवे, ये हमारा धर्म है। बिल्कुल कहना चाहिए KG-1, यहां से शुरू होना चाहिए, KG-1 से हमारे भीतर ये संस्कार आना चाहिए कि मेरे अंदर प्राणी मात्र के दुख को देख करके दया उमड़ती है कि नहीं उमड़ती, करुणा आती है कि नहीं आती है। मेरा वो जो धर्म है वो कहां गायब हो गया? अगर नहीं आती है तो मुझे ऊपर जो परतें जम गई हैं जिसकी वजह से नहीं आती है, उन परतों को हटाना चाहिए। क्यों नहीं मेरे ऊपर मेरे मन में करुणा आती है? जो मेरे अपने हैं उनके दुख में तो मुझे थोड़ी करुणा आती है, लेकिन जिससे मेरा कोई संबंध नहीं उनके दुख में मुझे बिल्कुल करुणा नहीं आती है। अरे तो कुछ गड़बड़ है मेरे भीतर, आना तो सबके प्रति चाहिए, यहां से शुरू करना पड़ेगा। धर्म की साधना करना, धर्म की उपासना करना, और साथ साथ में तीसरी चीज है धर्म की महिमा को अनुभव करना। धर्म की साधना करने वाले बहुत थोड़े लोग हैं, धर्म की उपासना करने वाले भी बहुत थोड़े लोग हैं, धर्म की महिमा भी बाहर बाहर गाने वाले बहुत लोग मिलेंगे, पर अंतरंग में धर्म की महिमा को अनुभव करना, इसके लिए भी बहुत कमी है। अभी मैं पढ़ रहा था कि धर्म के अनुयायी बहुत सारे हैं, लेकिन धर्म के अनुयायी क्या क्या करते हैं ये देखो अगर, तो लगता नहीं है कि ये धर्म के अनुयायी है। बताइए क्या धर्म का अनुयायी और धर्म के विरुद्ध कार्य करेगा? लेकिन मजा ये है कि धर्म का अनुयायी कहलाने वाला, क्या अपन जैन धर्म के अनुयायी नहीं है? क्या कोई इसमें वैष्णव धर्म का अनुयायी नहीं बैठा है? सब धर्म के अनुयायी बैठे होंगे, लेकिन देखें अगर तो दया धर्म कहा गया है। क्या हम दया का पूरा पालन करते हैं? इसका मतलब हम अभी धार्मिक नहीं है, धर्म के अनुयायी जरूर हैं। वैष्णव जन तो तैने कहिए जे पीर पराई जाने रे, वैष्णव तो वे हैं जो कि दूसरे की पीर जानते हैं, दूसरे के दुख को पहचानते हैं और उसके प्रति दया का भाव रखते हैं। और इसी में ये लगा लो कि जैनी जन तो तैने कहिए जे पीर पराई जाने रे, जिसको जो लगाना हो वो लगा लो, पर देखा जाए अगर तो अकेले किसी धर्म को फॉलो करना जरूरी नहीं है, उस धर्म की जो थीम है उसको अपने जीवन में प्रकट करना वास्तव में धर्म की उपासना है, वास्तव में धर्म की महिमा है, वास्तव में धर्म की साधना है। ये तीनों ही चीजें धर्म भावना में समाई हुई है। साधना भी करनी हो, उपासना भी करनी हो, उसकी महिमा या उसकी भावना भी भानी है, तब कहलाएगी पूरी की पूरी धर्म भावना। ऐसे अपन को विचार करना चाहिए। तो सबसे पहले हमारे अंदर जीवों के प्रति करुणा का भाव आना चाहिए। एक सेठ जी के यहां पर एक भिखारी पहुंचा है, तो वो सेठ जी तो कभी किसी को कुछ देते ही नहीं थे, ये भिखारी कैसे आ गया? क्योंकि और जो गांव के भिखारी थे वे तो जब सब जानते थे, कोई नहीं आता था भीख मांगने उन सेठ जी के यहां। तो सेठ जी समझ गए कि नया भिखारी आया है लगता गांव में, इसलिए उसको मालूम नहीं है, इसलिए आ गया। अब आई गया है तो सेठ जी ने थोड़ा मजा लेना चाहा, बोले देख मैं वैसे किसी को नहीं देखता देता, तू और भिखारियों से मिल लेना, पता कर लेना, वो नहीं आते मेरे पास में, अब तेरे को मालूम पड़ जाएगा तू भी नहीं आएगा। पर आज आ गया है तो मेरा एक काम कर, क्या? मैं तेरे को देऊंगा, लेकिन तब देऊंगा जब तू एक मेरे प्रश्न का जवाब दे। हाँ ठीक है मैं दे दूंगा, तो देख जरा मेरी दोनों आंख, एक नकली है एक असली है, तू अगर ये बता दे कि कौन सी असली और कौन सी नकली है, मैं तेरे को देऊंगा फिर। अब बड़ी मुश्किल पड़ी, लेकिन एक क्षण को देखा उसने भिखारी ने, भिखारी भी इतना तो संवेदनशील था, और उसने कहा सेठ जी आपकी दाहिनी आंख असली है बाईं नकली है। सेठ जी दंग रह गए कि कोई नहीं बता पाया, लेकिन इस आदमी ने बिल्कुल एग्जैक्ट बता दिया कि दाहिनी आंख असली है आपकी और बाईं आंख नकली है। सेठ जी ने कहा कि क्राइटेरिया क्या है, कैसे पता किया? बोले इसलिए पता किया क्योंकि आपकी ओरिजिनल में तो कोई दया है ही नहीं, ये जो डुप्लीकेट है उसमें थोड़ी दया झलक रही। अब बताओ आप मजा है, इसलिए मैंने पहचान लिया कि ये जो नकली वाली इसमें तो थोड़ी दया दिख रही, वो किसी और की लगाई होगी आपने, उसमें थोड़ी दया है। भैया मेरे कहने का आशय ये है कि हमारी आंखों में भी दया झलकनी चाहिए और हमारी चेतना में भी झलकनी चाहिए। वास्तव में ये धीरे धीरे कम होती चली जा रही, हमारी जो ओरिजिनलिटी है वो हमारी दया और करुणा ही है, वहां से हम शुरू करते हैं। और जब हम इतने संवेदनशील हो जाते हैं तब फिर हमें लगता है कि संसार में तो कदम कदम पर मैं अपने धर्म का पालन नहीं कर पाऊंगा, तब फिर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप धर्म की प्राप्ति कैसे होगी? संन्यास धारण करने पर ही होगी। इस गृहस्थी में रह करके तो मैं हिंसा से बच ही नहीं सकता हूं, इसलिए गृहस्थी छोड़ता हूं, संन्यास धारण करता हूं, रत्नत्रय की दीक्षा ग्रहण करता हूं। हो गया, रत्नत्रय की प्राप्ति हो गई धर्म। और जब मुझे रत्नत्रय की प्राप्ति हो गई तो अब फिर लगता है कि ये जो उत्तम क्षमा कहते ना, उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, सत्य सोच संयम तप त्याग उपाव है, और आकिंचन ब्रह्मचरी ये धर्म का सार है, ऐसा समझ में आने लगता है। तो यही तो 10 धर्म कहे गए हैं, और जब हम इन 10 धर्मों का पालन करने लगते रत्नत्रय के साथ, सबसे पहले जीव दया आई, रत्नत्रय आया, 10 धर्मों की भावना आई, तब जाकर के अपने स्वभाव में हम स्थिर रहना सीख गए। और जो अपने स्वभाव में स्थिर रहे वही तो उसका धर्म है वास्तव में। अज्ञान में लिखा है भैया, हाँ भत्स भावो धम्मो खमादि भावो यदस्वी हो धम्मो रायनत्यम च धम्मो जीवाणम रखनो। कितने अच्छे से उन्होंने इस धर्म को हमें बता दिया। स्टेप बाय स्टेप हम शुरू करें और अपने भीतर इन सबको प्रकट होते देखें। प्रकट कोई भी चीज कब होती है? जब ऊपर की आवरण या मलिनता हट जाती। हमें करना क्या है? हमें इनको प्रकट करने के लिए ऊपर के आवरण और मलिनता हटानी। आवरण और मलिनता हमारे अपने पाप, हमारी अपनी कषाएं डालती हैं, हमें उनको कमती करना। धर्म का उपदेश यही है। हम जितना जितना इन मलिनताओं को हटाते चले जाएं, उतनी उतनी हमारी उज्ज्वलता या निर्मलता, जो हमारा स्वभाव है, जो हमारा धर्म है, वो अपने आप प्रकट होता चला जाएगा। वो संपत्ति जो हमारी अपनी है, जो कि छिपी हुई है हमारे भीतर, वो हमें मिलने लगेगी। और उस संपत्ति के मिलने पर बाकी सब दुनिया की चीजें फिर व्यर्थ मालूम पड़ने लगती। तब तक नहीं मालूम पड़ेंगी, वैसे हम अगर छोड़ देंगे तो हमें उनकी व्यर्थता बिना मालूम पड़े छोड़ देंगे तो आसक्ति बनी रहेगी। धर्म हमें यह सिखाता है कि तुम अपने स्वभाव को पहचान जाओ तो बाकी चीजें जो हैं वो फिर तुम्हें आकर्षित नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अपनी निजी संपत्ति किसी को मालूम पड़ जाए तो पराई संपत्ति पर आंख काहे को खराब करेगा, बताइए। और जब 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 तक कि दूसरे की संपत्ति हड़पने और छीनने का भाव है, इसके मतलब अपनी संपत्ति नहीं मालूम। सीधा सीधा सा एक बेटे को जो है, एक छोटी सी घटना और सुनाता हूं और बस अपन के समझ में इतने में तो आ गया होगा कि हमें कहां से धर्म की शुरुआत करना है। और ये धर्म मन, वचन, काय तीनों से शुरू करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम वचन से दया करें और शरीर से दया सीख ले। भैया मन से भी सीखना पड़ेगी, तो मन, वचन, काय से दया आती है। मन, वचन, काय में ही रत्नत्रय के प्रति नहीं भी आवे भैया, तो कम से कम इतना तो हो ही सकता है कि जो दयालु हैं उनके प्रति भी अपने मन में श्रद्धा का भाव आ जाए। जो रत्नत्रय को धारण किए हैं उनके प्रति भी अपने मन में श्रद्धा का भाव आ जाए। उत्तम, क्षमा आदि जो 10 धर्म है उनको भाने की भावना ही आ जाए, उनकी उपासना करने लगे। अभी साधना बहुत दूर की है, भावना, फिर उपासना, फिर साधना, इतना ही तो करना है धर्म के लिए। और ऐसा हम अपने जीवन में अगर शुरू कर देवे तो कोई ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर पाएंगे। और जिस दिन हमें इसका स्वाद आने लगेगा, ये हमें मालूम पड़ने लगेगा कि वास्तव में गुस्सा करने में आनंद नहीं है, जिन क्षणों में मैं गुस्सा नहीं करता उन क्षणों में आनंद है, अहंकार करने में आनंद नहीं है, जिन क्षणों में मैं बहुत विनयवान होता हूं उन क्षणों में बहुत आनंद आता है, ऐसा अपने अपने आप ही अनुभव से आने लगे, तो किसी के कहने वहने से नहीं। और अभ्यास इसी का करना चाहिए। तो एक बेटे को पिता की इच्छा थी कि राजा के यहां पर नौकरी मिल जाए। बड़ी कोशिश करी कि राजा के दरबार में इसको, तो उस कोशिश के लिए उसने बहुत पढ़ा है, क्योंकि राजा के दरबार में एक सलाहकार की तरह अगर नौकरी पानी है तो बहुत पढ़ा लिखा होना चाहिए, समझदार, अनुभवी होना चाहिए। तो 10-12 साल तक बेटे को खूब पढ़ाया और ले गया राजा के पास। राजा ने आंख उठा करके नहीं देखा, बड़ा मुश्किल पड़ी। उसको सब बताया उसने, उसकी डिग्री वीरी दिखाई कि इतनी इतनी डिग्री लेकर क्या है। राजा ने आंख तक नहीं उठाई और बिना आंख उठाए और कहा कि अभी एक साल और पढ़। उन्होंने कहा जब इतने पढ़ाया है तो एक और पढ़ाए लेते हैं, तो एक साल और पढ़ने भेज दिया उसको। अब और उसने जितना नहीं पढ़ा था वो और सब पढ़ लिया। एक साल के बाद फिर राजा के यहां ले गए, तब की बार राजा ने आंख तो उठाई लेकिन देख करके कहा कि अभी तो और थोड़ा पढ़ाओ, अब इसकी इतनी गुंजाइश ही नहीं थी। उसने कहा राजन हमारे तो कुछ समझ में नहीं आया, कितना हमने 12 वर्ष पढ़ाया, आपके कहने से एक बरस और पढ़ाया, कुछ और कहिएगा क्या पढ़ाऊं अब। कहते पढ़ाने का नहीं कह रहा हूं, किसी गुरु के चरणों में रखो इसको एक बरस तक। ठीक है, गुरुओं के पास ले गए, उनके चरणों में सौंप के आ गए कि एक वर्ष बाद आएंगे वो फिर वापस ले जाएंगे। अब एक वर्ष के बाद जब वो बेटा को लेने पहुंचा पिता, तो बेटे की स्थिति तो बिल्कुल बदल गई थी। बेटे ने तो पिता की तरफ देखा ही नहीं, वो तो अपने मगन गुरु के चरणों में बैठा हुआ था, विनयवान बहुत। ऐसा नहीं कि पिता को इग्नोर किया हो, ऐसा नहीं कि पिता का अनादर किया हो, पूरा विनय से भरा हुआ, लेकिन पिता की उपस्थिति से उसको कोई विशेष फर्क नहीं पड़ा। उसने पिता ने कहा कि चलो एक साल हो गया राजा के दरबार में नौकरी के लिए, उसने जाने से इनकार कर दिया। अब गुरुजी से कहा कि आप समझाओ इसको, उन्होंने कहा मुझे क्या समझाना, जाता हो तो ले जाओ, हमारे पास तुमने साल भर को रखने का कहा था तो हमने रख लिया, अब समय हो गया वो जाए तो ले जाओ। लेकिन बेटे ने जाने से इनकार कर दिया। खबर पहुंची, पिता तो बड़ा परेशान कि दो ही दिन से गए, ने राजा के दरबार में मिलो ने हमारे लड़का को, लड़का चलो गो। राजा ने भली सलाह दी तो राजा के पास पहुंचे कि देखो आपके दरबार में आप नहीं डर रखा और हमारे भी हाथ से गाओ, अब बोधे से लौट ही नहीं रहो गुरु जी के पास। राजा ने कहा तब तो फिर मैं चलता हूं, अभी तो मेरे पास वो नौकरी पाने आता था, अब उसको अपने यहां पर नौकरी देने के लिए मैं निवेदन करने जाऊंगा। अब तो उसके अंदर कोई ना कोई ऐसी बहुत बड़ी कीमती चीज आ गई है उसके समझ, अब तो वो मेरे दरबार को भी शोभा बढ़ाए। राजा जाते हैं खुद गुरुजी से कहते हैं कि मुझे मिलवाओ, सामने बैठा। राजा कहते कि चलो मेरे दरबार में अब तुम शोभा बढ़ाओगे, अब तुम्हें ज्ञान के साथ साथ उस ज्ञान का स्वाद भी आने लगा है, उसका अनुभव भी तुम्हें हो गया है, इसलिए अब तुम मेरे दरबार में रत्न की तरह शोभायमान हो, चलो मेरे दरबार में। उसने कहा कि राजन मैं पूछता हूं कि किसी को सच्चा दरबार मिल जाए तो आपके झूठे दरबार में काय को जाएगा वो। राजा ने कहा कि मैं इसीलिए लेने आया हूं कि मेरे दरबार की शोभा तो तुमसे बढ़ेगी लेकिन तुम्हारी अपनी शोभा तो इसी दरबार में बढ़ी हुई है। उस कहानी का आशय इतना ही था कि उसे ये समझ में, कल तक जो व्यक्ति राजा के दरबार में जगह अपने लिए हासिल करने के लिए और इतना प्रयत्न कर रहा था, आज वो कह रहा है कि मुझे सच्चा दरबार मिल गया, मुझे अपने भीतर की निधि मिल गई, मुझे गुरु के चरणों में बैठ के यह समझ में आ गया है कि वास्तव में पाने योग्य क्या है इस संसार में। निराकुलता पाने योग्य है। संसार तो आकुलता सिखाता है कि ये दौड़ के ले लो, ये दौड़ के पालो। क्या सिखाता है संसार बताइएगा? सिर्फ एक धर्म है जो सिखाता है कि निराकुल हो उतनी शांति रहेगी और जितनी तुम संसार की तरफ जाओगे उतनी आकुलता ही बढ़ेगी। संसार सिर्फ आकुलता सिखाता है, धर्म उससे विपरीत है, वो हमें निराकुल बनाता है, वो हमारा स्वभाव है। और जब जब हम स्वभाव में होते हैं तो आनंद आता है और जब हम स्वभाव से विपरीत जाते हैं तो हम ही दुखी हो जाते हैं। इतनी सीधी सी बात ये धर्म भावना हमें सिखाती है। हमें इस धर्म भावना का लाभ लेकर के अपने जीवन को निरंतर धर्ममय अर्थात निराकुल बनाने का प्रयास करना चाहिए। बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर
के गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चाधिक दर्शन करने वाला है। अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक होता, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। समतारस पान किया करते सुख दुख दानों की घड़ियों में, भवबंधन तड़ तड़ टूट पड़े खिल जावे अंतर की कलियां।
मिथ्या तम नाश वेखो ज्ञान के प्रकाश वेखो माता पर हास वेखो मानुषी भगवानी है
तो घोड़ा कूदा था घोड़ा मेरा राजा बेटा थोड़ी गिर सकता है और चुप हो गया। ये जिनवाणी की पद्धति जिनवाणी माँ की भी यही पद्धति है। अरे तुम्हें कौन से दुख आ गए हैं जरा महापुरुषों के दुखों की चर्चा तो देखो। वे तो नहीं रोए थे उन पे इतनी बड़ी बड़ी विपत्ति आई थी दीदी सुबह गिर गई थी वो तो नहीं रोई थी तुम तो जरा से गिरने पे रोते। ये महापुरुषों का जैसे यहाँ वो समझा रहे वैसे जिनवाणी समझाती कि महापुरुषों पे क्या विपत्तियां आई उनने तो नहीं धर्म छोड़ दिया तुम तो जरा में रोने लगे और अपने स्वभाव से विचलित हो। ये प्रथमान योग की पद्धति है। नहीं समझ में आता है तो फिर कहते कि तुम सवेरे लड़े थे झगड़ा करो तो तुमने ऊ को परिणाम है तुमने जैसा किया होगा उसका फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। ये करणान योग की पद्धति और चरणान योग की पद्धति यही है कि भैया तुम देख के तो चलने रहे थे अब गिर पड़े तो रुक आए रहे तुम देख भाल के चलो ठीक रास्ते पर अच्छा आचरण रखो तो फिर देखें कैसे नहीं तुम्हें अपने आत्मा का बोध होता। और इस सब के बाद बचता है यही कि घोड़ा कूदा था अरे पर्याय में क्या मानना मैं तो शुद्ध बुद्ध एक निरंजन हूं मुझे मेरा बेटा तो राजा बेटा है ये तो घोड़ा कूदा था मतलब ये शरीर वरीर तो सब बहुत बाहरी है मैं तो फिर भी राजा बेटा ही हूं मैं तो शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव वाला ही हूं। ये द्रव्यान योग की पद्धति देखो कितने आसानी से जो है और हमें जैसे एक माँ हमारे दुख को दूर करती है हमें चुप कर लेती है ऐसी तो जिनवाणी माँ हमारे दुख को दूर करने के लिए हमारा हित करने के लिए हमारा कल्याण करने के लिए ज्ञान हासिल करने की क्या धर्म हासिल करने की चार चार पद्धतियां हमें बता दी हैं। भैया अब जैसी अपनी योग्यता होवे और जैसा अपना स्वभाव जान करके और जैसे अपना कल्याण बने इन चारों अनियोगों की पद्धति से और ज्ञान हासिल करके और अपने कल्याण का मार्ग स्वयं प्रशस्त करना चाहिए इसी भावना के साथ कि हमको भगवान के द्वारा कहा गया ज्ञान प्राप्त हो और हम अपना कल्याण करें। बोलिए आचार्य।